दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक लड़की हमारे समाज की जो मानसिकता है, जो सामाजिक रिवाज है, उसके हिसाब से जो भी लड़की शादी के बंधन में बनने की प्रक्रिया में शामिल होती है, उसके भी मन में कई अरमान होते हैं, कई चाहते होती हैं। पलक भी उन अरमानों के आकाश में हसीन सपने बुनने लगी थी, और बुने भी क्यों ना, उसकी तो कोई गलती थी भी नहीं। उसे सहज के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सहज चाहते हुए भी उसे कुछ बता नहीं सका। एक तरफ कुआं और कहते हैं ना दूसरी तरफ खाई, यहां तो चारों तरफ खाई ही खाई थी, जिसे सहज की नई जिंदगी के लिए कांटों से भरकर तैयार किया गया था। आधिकारिक रूप से ऑफिशियली एंगेजमेंट हो चुका था सहज का, पर उसका मन बहुत ही अशांत एवं विचलित था। वह अब किसी से कुछ कहता ही नहीं था, न पढ़ता, न हंसता और न ही रोता था। कॉलेज फिर से शुरू हो चुका था। वह रोज फोन बूथ में जाकर काफी समय बिताता, इस इंतजार में कि कभी तो उसके लिए फोन की घंटी बजे और शान से बात हो, उसका हालचाल मिले। फोन की प्रत्येक घंटी उसमें आशा का संचार करती और अगले ही पल वो निराशा में बदल जाती। कॉलेज में दूसरी तरफ उसके दोस्त अमन और उसके बीच की दीवार और बड़ी हो गई थी। शीत युद्ध जैसा माहौल हो गया था, एक जहां होता दूसरा बिल्कुल वहां नहीं होता। काम्या की मंशा भी पूरी हो चुकी थी, वह जीत चुकी थी। उसके अभिभावकों ने भी उसकी शादी किसी और से तय कर दी, परंतु उसका अमन के साथ घूमना फिरना बढ़ता ही जा रहा था। न चाहते हुए भी सहज ने उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश की। सहज ने कहा, अमन देखो, वैसे तो तुम समझदार हो, फिर यह गलती क्यों कर रहे हो? तुम काम्या को चाहते हो, यदि वो भी तुम्हारे लिए उतना ही समर्पित होती तो अपने अभिभावकों से भी शादी के लिए जरूर कहती ना, तुम्हारे साथ सिर्फ डेटिंग नहीं कर रही होती। अमन तो जैसे प्यार में अंधा हो चुका था, सहज की बातों का उस पर उल्टा ही असर होता। कहीं ना कहीं वो उसको दोषी मान रहा था, अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को लुटते देख रहा था सहज, पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था उस परिस्थिति पर। पता नहीं काम्या ने उस पर कौन सा जादू कर दिया था कि सहज की बातों का उस पर कोई असर ही नहीं होता था। कॉलेज में सबको यह बातें पता थी और दोनों दोस्तों की लड़ाई का मस्त मजा लेते थे सारे दोस्त। खासकर कॉलेज के किसी भी पार्टी में पीने के बाद सहज अपने मन के गुबार खूब निकालता और फिर नशा उतरने के बाद निष्क्रियता और खामोश शीत युद्ध शुरू हो जाता। सहज के सामने एक साथ कई चुनौतियां थी। पहली सांझ की चिंता, दूसरी पढ़ाई, तीसरी होने वाली शादी और चौथी दोस्ती का मजाक बनना। उसका दिमाग बहुत ही खराब हो रहा था। वो सब कुछ ठीक करना चाह रहा था, पर उसे कुछ भी हो नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसने भी समय और परिस्थितियों के सामने अपने हथियार डाल दिए। कहते हैं ना, जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता तो उसे चाहे या अनचाहे रूप से भगवान के सहारे ही होना पड़ता है। सहज ने भी सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट बहुत खराब हुए थे। उसने जब थोड़ा सोचा तो समझ आया कि यह रिजल्ट तो जिंदगी भर उसके साथ रहेंगे। कैरियर के लिहाज से यह रिजल्ट अच्छा रखना चाहिए, यह सोचकर उसने खुद से पढ़ने की शुरुआत कर दी ताकि अगली बार रिजल्ट अच्छा हो। सिगरेट और शराब दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। दोस्त उसे कभी टंकी तो कभी बेवड़ा बोलने लगे थे, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वह मजाक का पात्र बन चुका था, और बनता भी क्यों नहीं, जिंदगी ने उसका मजाक जो बना दिया था। न खुद की चाहत, न खुद के फैसले, बस आज्ञा का पालन करना बच गया था उसके पास। शादी और इंगेजमेंट के बीच करीब 8 महीने का अंतराल था। सहज के मन में कई बार ख्याल आया कि पलक को सब कुछ सच सच बता दे, पर न साधन थे और न ही हिम्मत हो रही। जीने और मरने के बीच कोई अपनी चाहतों को कैसे भूल सकता है भला। 8 महीने हो गए थे सांस से बिछड़े हुए, आज भी खबर नहीं थी दोनों को एक दूसरे की, दोनों बस जिंदगी काट रहे थे। सहज तो फिर भी कॉलेज और दोस्तों के बीच था, पर सांच कहाँ रही होगी, अकेली, बिल्कुल अकेली, न कोई पूछने वाला और न ही कोई संभालने वाला। शायद मर गई थी वो जीते जीते। सहज और पलक की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। उधर सहज की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, एक अनजाने डर से वह बहुत ही परेशान हो रहा था। पापा जी ने इन दिनों फिर से न जाने कितने अनुष्ठान, पूजा एवं यज्ञ कराए ताकि सहज का मन न बदले और वह चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाए। विद्वान पंडितों ने भी भर भर कर अपने सिद्धियों और ज्ञान का प्रयोग किया और खूब सारे पैसे बटोरे। पापा जी भी कहां हार मानने वाले थे, जब तप, योग, तांत्रिक अनुष्ठान कुछ भी नहीं छोड़ा था उन्होंने सहज को हराने के लिए या खुद की जीत की खुशियों के लिए। मरे हुए को कितना कोई मार सकता है भला। सहज तो पहले ही मरा हुआ था, फिर भी किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा था। सब अपनी हसरतें पूरी किए जा रहे थे, वह चुपचाप सारे रस्मों और रिवाजों को पूरा करता जा रहा था। बार बार उसे सांझ का ख्याल आ रहा था कि कम से कम उसे बता तो देता कि किन परिस्थितियों में उसने शादी के लिए सहमति दी। कोई उपाय नहीं था, न ही कोई समाधान। अपने अरमानों की बलि के अलावा उसके पास कोई हल नहीं था। शादी के एक दिन पहले स्कूल के कुछ दोस्त और कॉलेज के कुछ दोस्त गांव पहुंच गए सहज के पास। उसे कुछ राहत मिली क्योंकि बोलने और बात करने वाले कुछ साथी तो मिल गए। कुछ खास दोस्त भी थे जिन्हें सहज की मनस्थिति के बारे में पता था, वो भी सिर्फ दिलासा ही तो दे सकते थे। बाकी तो सिर्फ मस्ती करने आए थे अपने दोस्त की शादी में, वो अपनी मस्ती में लगे थे। उनके स्वागत की पूरी तैयारी की गई थी, पीने वालों के लिए खास इंतजाम किए गए थे और उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि वह पानी के बदले सिर्फ बियर ही पिए। हर जगह पानी के स्थान पर बियर की बोतलें रखी गई थी, यहां तक कि चापाकल हैंडपंप पर नहाने के समय भी बाल्टी में बर्फ के साथ बियर की बोतलों का इंतजाम था। उनके कमरे में, उनकी गाड़ी में हमेशा 2 कार्टून बियर और 2 कार्टून शराब की उपलब्धता हमेशा रहती थी। दोस्तों के खाने पीने की पूरी अच्छी व्यवस्था थी। गांव के लोग यह कहने से नहीं चूके कि ये विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या शराबी। सहज और उसके दोस्तों पर समाज और उनकी खोखली विचारों का अब कोई असर नहीं होने वाला था। हंसी खुशी के माहौल में बारात निकली और शादी की सारी विधियां दोनों तरफ के पंडितों ने मिलकर पूरी कर ली। रात भर शादी के रिवाज चलते रहे। थकान और अनिश्चितता के कारण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फेरे और कोहबर होने के बाद सहज वापस जनवा से आ गया। न जाने किस नींद में सोया कि 3 घंटे बाद किसी के जगाने पर उसकी नींद खुली। हाँ, उसकी नींद खुली थी। सोता तो वो रोज ही था, पर ऐसा लग रहा था कि वर्षों बाद वो जगा है। सहसा उसे एहसास हुआ कि उसकी शादी हो गई। पल भर में ऐसा प्रतीत हुआ कि कैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी सांझ उससे हमेशा के लिए छीन ली गई है। किसी को बता भी नहीं सकता था अपने मन की बात, रो भी तो नहीं सकता था, और हंसी तो पहले ही छीन ली गई थी। ऐसे कितने अनजान डर उसे डरा रहे थे। तभी दोस्तों की टोली आ गई। सबने वापस लौटने के पूर्व अपनी भाभी यानी पलक से मिलने की इच्छा व्यक्त की, और उनका हक भी था, आखिर दोस्त भी तो थे वो। थोड़ी देर में नाश्ते के निमंत्रण के साथ सहज और उसके दोस्तों को पलक के घर बुलाया गया। बहुत ही शांत और सौम्य तरीके से पलक अपनी बहनों के बीच पीली साड़ी में लिपटी हुई बैठी हुई थी। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों में मेहंदी और आभूषणों से सुसज्जित होकर चुपचाप बैठी थी पलक, जो कभी कभी चुपके से सहज को देखने की कोशिश कर रही थी। जहां दोस्त तैयार हो, सालियां हो, वहां हंसी मजाक कैसे ना हो। एक से एक बढ़कर सवाल जवाब होते रहे। कभी दोस्तों के सवाल पर सालियों का जवाब, तो पलटवार करते सालियों के जवाब पर दोस्तों का मजाक। करीब एक डेढ़ घंटा यूं ही चलता रहा। इस बीच पलक ने ना कुछ कहा और ना कोई बात की। सहज को बार बार इस बात का एहसास हो रहा था कि पलक ने तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे मन और वचन से सहज की जिंदगी में कदम रख रखा था। उसे किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती थी नहीं। गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था कि वह इस रिश्ते के साथ न्याय करे तो कैसे। अब दोस्तों की वापसी का समय हो रहा था, उनकी विदाई की गई और वह अपने हॉस्टल वापसी के लिए रांची की बस पकड़ने चल दिए। उनके जाने के बाद सहज और अकेला पड़ गया था। अब ना तो वह बात कर पा रहा था और न ही अकेला रह पा रहा था। इन्हीं सब के बीच विदाई आदि की भी तैयारी होने लगी। समय और मुहूर्त के अनुसार सहज के साथ पलक की विदाई हुई। परिजनों से दूर होने का एहसास किसे बुरा नहीं लगता। पलक भी अपनी स्वर्गवासी माँ को याद कर बहुत रोई। पापा, भाई लोग और दादी का आशीर्वाद लिया और अपने नए घर की ओर प्रस्थान कर गई। सहज के घर पर दुल्हन के स्वागत की पूरी तैयारी थी। माँ, बहनों और गांव की औरतों की भीड़ के बीच द्वार आगमन की रीतियां पूरी की गई, कुल देवता की पूजा की गई और फिर उसको कमरे में बिठा दिया गया। गांव की औरतों का आना जाना दिन भर लगा रहा। घूंघट किए पलक भी थक चुकी थी। सुबह से शाम तक सिर्फ लोगों को प्रणाम करते करते अब तो कमर भी दर्द करने लगा था। आज की कहानी में दोस्तों इतना ही। अगले एपिसोड में आगे देखते हैं फिर क्या होगा।